नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मीका नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और राज्य। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से मीका नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब ने इस पुस्तक की प्रस्तावना को देखा और इसके साथ कुछ पदों का अध्ययन भी किया। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार इस पुस्तक के द्वारा हम अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकते हैं। आज जब हम आपके जीवित वचन में से मनन चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय आपके वचन को सुनने के लिए रेडियो के निकट बैठे हैं, आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि प्रत्येक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपका वचन प्रत्येक के जीवन में आशीषों को पहुंचाने पाए। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, या अपने नौकरी की तलाश में हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, पिताजी आप उनके मनोकामनाओं को पूरा करें, अपने वचन के द्वारा उनसे बोले और बातचीत करें ताकि वे जानने पाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं। आज के अध्ययन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब मीका नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मोरेशेत वासी मीका यद्यपि यहूदा वासी था, परंतु उसने अधिकतर समय इसराइल के लिए भविष्यवाणी की। उसने उन्हें परमेश्वर के दंड का संदेश सुनाया था, क्योंकि वहां पर अधिक भ्रष्टाचार था और मूर्ति पूजा में लोग लिप्त थे। वे एक ओर तो परमेश्वर की आराधना करते थे और दूसरी ओर ऊंचे स्थानों में घोर अनैतिकता के साथ मूर्ति पूजा करते थे। अतः परमेश्वर ने कहा कि वह शोमरोन को नाश कर देगा और वहां भवनों की नींव तक हिला दी जाएंगी, वह दाख की बारी लगेगी, उनकी इमारतों के पत्थर खड्ढे में तब्दील हो जाएंगे, पत्थरें लुढ़का दी जाएंगी। आज वहां ठीक ऐसा ही दृश्य है, क्योंकि उस स्थान पर लोगों ने परमेश्वर को आदर नहीं दिया था। मेरे मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि पद 5 में लिखा है, यहां परमेश्वर अपने दंड को स्पष्ट करता है। मीका नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, यह सब याकूब के अपराध और इसराइल के घराने के पाप के कारण होता है। याकूब का अपराध क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या हैं? क्या यरूशलेम नहीं? ध्यान दीजिए, याकूब के अपराध और इसराइल के घराने के पाप के कारण होता है। वह दोनों राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में कह रहा है। याकूब के अपराध क्या थे, या याकूब के अपराधों का उत्तरदायी कौन था? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या हैं? क्या यरूशलेम नहीं? मेरे मित्रों, मीका राजधानियों को उत्तरदायी ठहराता है। यरूशलेम उनकी आराधना का स्थान था। क्या वे वहां परमेश्वर की आराधना कर रहे थे? वे वहां नियमित रूप से आराधना करते थे, परंतु वे ऊंचे स्थानों में भी जाकर पूजा करते थे, जहां घोर अनैतिकता का व्यवहार था। परमेश्वर कहता है, इस भ्रष्टाचार के कारण वह इन दोनों नगरों को दंड देगा, क्योंकि उनके पाप का कुप्रभाव दोनों राष्ट्रों पर पड़ रहा था। मीका के युग में सामरिया और यरूशलेम भ्रष्ट हो गए थे, जिसके कारण परमेश्वर उन्हें दंड देने जा रहा था। अब हम पहला असाधारण वक्तव्य को देखते हैं, जो सबसे लंबा है और अध्याय के अंत तक है, पद 6 से 16 तक। यह अंतिम समय के विनाश का लघु रूप है। अध्याय 4 में हम अंतिम दिनों के विनाश का वर्णन देखेंगे, परंतु यहां सामरिया का विनाश है। उस अति सुंदर सांस्कृतिक नगर को अश्शूरों ने ध्वंस कर दिया था। तो आइए हम पढ़ते हैं मीका की पुस्तक 1 अध्याय उसके 6 पद। यहां पर लिखा हुआ है, इस कारण मैं सामरिया को मैदान में का ढेर बना दूंगा और दाख का बगीचा बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को खड में लुढ़का दूंगा और उसकी नींव उखाड़ दूंगा। ध्यान दीजिए, कहता है मैं सामरिया को मैदान में का ढेर बना दूंगा और दाख का बगीचा बनाऊंगा। आज वह स्थान ऐसा ही है। जी हां, मेरे एक मित्र ने मुझे बताया है, जिसने उसे देखा, उसने कहा, मैंने सामरिया के एक छोटे से भाग में अरबों की दाख की बारी को उगाते हुए देखा है। कुछ अन्य भाग भी उस खंडहर में हैं, जहां बगीचा उग रहे हैं। मेरे प्रियो, लिखा है, मैं उनके पत्थरों को खड में लुढ़का दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि मुझे मेरे मित्र ने बताया है, उसने कहा है कि मैंने सामरिया के सबसे ऊंचे स्थान में खड़े होकर के देखा है, नीचे देखा है, और आप जानते हैं उस घाटी में क्या है, वहां खंभे और तराशे हुए पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। ये पत्थर कभी वहां की इमारतों में चुने गए थे, लगे हुए थे, जैसा मीका ने भविष्यवाणी में कहा था, ठीक वैसे ही वे पत्थर खड में लुढ़का दिए गए हैं। तब वह कहता है, और उनकी नींव उखाड़ दूंगा। काश मैं आपको वहां के चित्र दिखा पाता। अहाब और इजेबेल तथा उत्तर काल के सब रोमी निर्माणों की नींव पूरी तरह उखड़ी पड़ी है। वहां खंडहरों की नींव देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वहां कभी एक महानगर था जो अब विलोप हो गया। मेरे मित्रों, परमेश्वर सच्चा है और जो कुछ वह कहता है उसे करता है। हम देखते हैं मीका नबी की पुस्तक 1:7 में लिखा हुआ है, उसकी सब खुदी हुई मूर्तें टुकड़े टुकड़े की जाएंगी और जो कुछ उसने छीनाला करके कमाया है वह आग से भस्म कर दिया जाएगा और उसकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर करूंगा, क्योंकि छीनाले ही की कमाई से उसने उनका संचय किया है और वह फिर छीनाले की सी कमाई हो जाएगी। मेरे मित्रों, ध्यान से सुनिए कि वह क्या कहता है, उसकी सब खुदी हुई मूर्तें टुकड़े टुकड़े कर दी जाएंगी। मैंने वहां अपने मित्र के द्वारा बताए गए उस गाइड से पूछा कि क्या वहां पुरातत्व विभाग की खुदाई में कोई मूर्ति पाई गई है। उसने कहा, एक भी नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहां हर एक ऊंचे स्थान पर मूर्तियां लगाई गई थीं और उसकी पूजा में घोर अपराध किया जाता था। मोलेक की पूजा में मूर्ति को जलाकर उसके हाथों में जीवित बच्चे रख दिए जाते थे। यह अति भयानक काम था। उनके लिए धर्म और अवैध यौनाचार एक ही था। मेरे मित्रों, आज भी जहां शैतान की आराधना की जाती है ऐसा ही होता है। इसलिए आगे वह कहता है, जो कुछ उसने छीनाला करके कमाया है वह आग से भस्म किया जाएगा। वहां अति मूल्यवान पात्र थे। उस गाइड ने बताया कि खुदाई में बहुमूल्य हाथी दांत के इत्र दान और मदिरा पात्र पाए गए हैं। ये वास्तव में आहाब के राज महल में थे। लिखा है, छीनाले की कमाई से उसने उनका संचय किया है और वह फिर छीनाले की कमाई हो जाएगी। मेरे मित्रों, इन मूर्ति पूजा में यौनाचार मुख्य था। आज पता लगा है कि कुरिंथ नगर में एफ्रोडाइट की पूजा के लिए 1000 कन्याएं थी जो वास्तव में वेश्याएं थी। उनके धर्म का मुख्य भाग यौनाचार था। वहां आने वाले आराधकों को पैसा देना पड़ता था। वहां हर एक कदम पर वेश्यालय था। संपूर्ण अनाचार धर्म के नाम पर था। ऐसा ही फिनिके में था, पलिस्तियों में था। इस्राएल ने उससे यह सब कुछ सीखा था। आज का नया नैतिक आधार वास्तव में नया नहीं, प्राचीन अन्य जाति व्यवहार है, जैसे मोलेक, बाल देवता या अन्य प्राचीन पूजा पाठ। आज भी मनुष्य धर्म को बंधनों में जकड़ा हुआ है। परंतु याद रखें कि मसीही विश्वास एक धर्म नहीं, मनुष्य है। यूहन्नार्थी सुसमाचार 8:36 में प्रभु यीशु ने कहा है, पुत्र यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जी हां, वह आपको पाप और धर्म के बंधनों से मुक्त करेगा, छुटकारा देगा, मुक्ति देगा। इस पद के अंत में मीका कहता है कि उनके छिनाले की कमाई फिर छिनाले की सी कमाई हो जाएगी। हेरोदेश ने उस नगर का पुनः निर्माण किया था क्योंकि उससे वह स्थान निवास के लिए बहुत मनप्रिय लगा था, परंतु वह फिर उजड़ गया। अन्य जाति उपासना वहां का मुख्य पाप था। मीका उनके और भी पापों का उल्लेख करेगा, तो आइए हम देखेंगे मीका का विलाप। मेरे मित्रों, शेष अध्याय में मीका का विलाप है। वह इसराइल के पाप और उनके परिणाम से बहुत दुखी था। मीका को किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता था, अर्थात यूं कहें कि मीका वेतनिक प्रचारक नहीं था, वह परमेश्वर द्वारा नियुक्त भविष्यद्वक्ता था। वह कोमल हृदय रखने में यर्मिया और होशे के समान था। हम प्रायः सोचते हैं कि पुराने नियम के सब भविष्यद्वक्ता एलियाह और यहेजकेल के समान कठोर थे। आपको स्मरण होगा कि जब परमेश्वर ने यहेजकेल को नियुक्त किया तब उससे कहा था कि वह उसे हठीले लोगों में तो भेज रहा है, परंतु वह उनसे भी अधिक कठोर बनाएगा। उन्हें वास्तव में कठोर मनुष्यों की आवश्यकता थी जो सीधी सीधी बात करें, परंतु कुछ भविष्यद्वक्ता कोमल थे, जिनमें से मीका भी एक था। सुनिए कि वह क्या कहता है। मीका की पुस्तक एक अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, इस कारण मैं छाती पीट कर हाय हाय करूंगा, मैं लुटा हुआ सा और नंगा चला फिरा करूंगा, मैं गीदड़ों के समान चिल्लाऊंगा और शुतुरमुर्गों के समान रोऊंगा। ध्यान दीजिए कि वह क्या कह रहा है, मैं लुटा हुआ सा और नंगा चला फिरा करूंगा। यह गहन शोक और परेशानी का प्रतीक था। तब वह कहता है, मैं गीदड़ों के समान चिल्लाऊंगा और शुतुरमुर्गों के समान रोऊंगा। मेरे मित्रों, आपने किसी गीदड़ को रात में चिल्लाते हुए सुना होगा, तो आप जानते हैं कि वह कैसी बुरी और अप्रिय होती है। अय्यूब भी इसी उपमा का प्रयोग करता है। अय्यूब की पुस्तक 30 अध्याय उसके 29 पद में वह कहता है, मैं गीदड़ों का भाई और शुतुरमुर्गों का संगी हो गया हूं। मुझे कभी नहीं मालूम था कि शुतुरमुर्ग रोता है। एक बार मैं एक चिड़ियाघर में अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए गया। वहां मुझे बड़ी दुखद आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कि कोई पशु संकट में चिल्ला रहा है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि वह किसकी आवाज है, तो उसने मुझसे कहा, शुतुरमुर्ग की। मैंने सोचा कि वह मुझे मूर्ख बना रहा है, इसलिए मैंने उसे धन्यवाद भी नहीं कहा। परंतु जब हम घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां कुछ शुतुरमुर्ग थे, तब मैंने देखा कि वास्तव में वे ही ऐसी दुखद आवाज निकाल रहे थे। अतः मीका कहता है कि वह वैसे ही दुखद आवाज निकालेगा। कहने का अर्थ है कि उसका संदेश उसे ही दुख पहुंचा रहा था, जैसे यर्मिया का संदेश यर्मिया को दुख पहुंचा रहा था। मेरे मित्रों, इससे स्पष्ट है कि मीका एक कोमल हृदय का मनुष्य था और परमेश्वर ने उसे कठोर संदेश देने के लिए चुना था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दंड देने से पूर्व चाहता है कि उसकी प्रजा उसकी कोमल भावनाओं को समझे। यही कारण था कि उसने यिर्मयाह को चुना, जिसे रोने वाला भविष्यद्वक्ता भी कहा जाता है। उसने मीका को भी इसी कारण से चुना था। इसराइल जब मीका का संदेश सुने और उसे दुख मनाता तथा विलाप करता देखे तो उसे बोध हो कि परमेश्वर उसके पापों के लिए कैसा रोता है। परमेश्वर बदला नहीं लेना चाहता और न ही वह कभी बदलता भी है। यद्यपि वह दंड देने से प्रसन्न नहीं होता, उसे पाप का दंड देना पड़ता है। यदि परमेश्वर दोषी को दंड न दे तो वह अपनी दृष्टि के प्रति न्याय नहीं करेगा, अतः वह बुराई और दुष्टता को दंड देता है। बुराई और पाप होने पर परमेश्वर न्याय करने के लिए बाध्य हो जाता है। वह विलंब करता है, परंतु जब वह करता है तब उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे मित्रों, हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन से भी बार बार पाप होते हैं, परंतु हमें दंड तुरंत नहीं मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है। वह विलंब करता है, वह मुझे और आपको अवसर देता है ताकि हम अपने पापों से मन फिराकर उसकी ओर लौट जाएं, उन बुराइयों को छोड़ दें ताकि हम उस भयानक दंड से बचाए जाएं। मीका 1 अध्याय उसके 9 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि उसका घाव असाध्य है और विपत्ति यहूदा पर भी आ पड़ी, वरन वह मेरे जाति भाइयों पर पड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुंच गई है। लिखता है, क्योंकि उसका घाव असाध्य है। इसराइल सीमा पार कर गया है और उसका लौटना अब संभव नहीं था। मैं यह तो नहीं जानता कि वह सीमा कहाँ है, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि वह है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर दयावान और अनुग्रहकारी नहीं है, परंतु जब मनुष्य पाप में इतना गिर जाए और परमेश्वर की चेतावनियों को भी ना सुने, तो एक समय आता है कि उसे वह दंड देता है। उनका घाव असाध्य था, वे परमेश्वर की वाणी नहीं सुन रहे थे। आज भी हम में से कई लोग परमेश्वर की उस सत्यता को, उस वचन को, उसकी वाणी को नहीं सुनते हैं, नहीं सुन रहे हैं, और वे अपने लिए दंड का मार्ग तैयार कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे हैं, हम उसकी आवाज सुनना नहीं चाहते हैं। आज परमेश्वर के वचन का सुना जाना बहुत है, परंतु किस गहराई से, मैं नहीं समझ पाता हूं। क्या वचन को सुनना और उसको मानना एक ही बात है? मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो पाप में हैं, मन नहीं फिराते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन से लगाव की बातें करते हैं। क्या उनकी दशा यह है कि वे सीमा पार कर चुके हैं और अब दंड की अपेक्षा उनके लिए और कुछ नहीं है? आगे कहता है, उसका घाव असाध्य है और विपत्ति यहूदा पर भी आ पड़ी, वरन वह मेरे जाति भाइयों पर पड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुंच गई है। मेरे प्रियो, अश्शूरों की सेना उत्तर दिशा से आई और इसराइल का सर्वनाश करके यरूशलेम की दीवार के पास डेरा डाले खड़ी थी। हिजकिया को डर था कि वे यरूशलेम को भी नष्ट कर देंगे, परंतु परमेश्वर ने यशाया से कहा कि वह राजा से कहे कि वे यरूशलेम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परंतु यह उनके लिए चेतावनी है। निसंदेह यहूदा ने चेतावनी पर ध्यान दिया, परंतु शीघ्र ही वे सब कुछ भूलकर फिर मूर्ति पूजा में लग गए और परमेश्वर ने इसराइल के समान यहूदा को भी दंड दिया। मेरे प्रियो, यहां 10 मुख्य स्थानों के नाम दिए गए हैं जिन पर सामरिया और यरूशलेम का कुप्रभाव पड़ा था। वे आज नक्शे अर्थात चित्र में नहीं है। सूची में सामरिया से लेकर दक्षिण की ओर के नगर का, जो यरूशलेम और यरूशलेम के पार है, इन स्थानों के नाम शब्दों का खेल है। जी हां, मीका एक अध्याय उसके 10 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, गत नगर में इसकी चर्चा मत करो और मत रो, बेत अर्परा में धूलि में लोटपोट करो। ध्यान दीजिए, कहता है गत नगर में इसकी चर्चा मत करो। गत का अर्थ है रोने वाला नगर। परमेश्वर कहता है रोने वाले नगर में मत रो। गत नगर इसराइल के चीर बैरियों का पलिस्ती नगर था। परमेश्वर के कहने का अर्थ है कि पलिस्ती न जान पाए कि इसराइल को परमेश्वर दंड देने वाला है। बेत आपरा में धूलि में लोटपोट करो। आपरा का अर्थ है धूल का नगर, सिर में धूल डालना, गहरे दुख का द्योतक था। वह नगर तो अज्ञात है, परंतु कहने का अर्थ यह है कि उन्हें अपनी ही सीमा में विलाप करना है। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे भी यही कह रहा है और हमें सचेत कर रहा है कि हम भी अपनी सीमा को पार ना करें, हम उसे ना पार करें, क्योंकि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, वह विलंब से कोप करता है, वह अवसर और मौका हमें देता है ताकि हम अपने मनों को फिराएं, परमेश्वर की ओर लौट आएं, उन बुराइयों को त्याग दें, क्योंकि उसने यहूदा और इसराइल के लिए मीका के द्वारा इन बातों को उन तक पहुंचाया है और वह चाहता है कि हम भी परमेश्वर के वचन को सुनकर मन फिराएं। यदि हम नहीं फिराते हैं, सीमा लांग जाते हैं, तो निश्चय जानिए कि हमारे लिए दंड भी निश्चित है। मेरे मित्रों, चुनाव आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
तुझसे जब मैं भटक गया, जीवन को तूने सहारा दिया। तुझसे जब मैं भटक गया, जीवन को तूने सहारा दिया। अच्छा चरवाहा बन के तूने मुझे तब ढूंढ लिया। अब से प्रभु मैं